नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, इन दिनों में हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम बहुत ही विशेष बातों को सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए किस प्रकार के व्यवस्था और नियमों को रखा ताकि वे देश में रहते हुए परमेश्वर के निकटता में बने रहें और अपने जीवन की गवाही के द्वारा दूसरों को भी प्रभु की निकटता में ला सकें। आज हमारे लिए एक विषय है जिसे हम देखेंगे, संसार, शरीर व शैतान। तो आइए हम इसके पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, और इतना ही नहीं, आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी विनती है कि आप हम में से प्रत्येक की सहायता करें, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हम आपके वचन को सुन करके अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जब हम अध्याय 23 में आते हैं तो यहाँ पर अध्याय 23 राष्ट्रीय और पारिवारिक नियमों को स्थापित करने के रुचिदायक खंड को आगे बढ़ाता है। संसार, शरीर, शैतान, ये तीन ऐसे शत्रु हैं जिनका सामना एक विश्वासी अपने जीवन में प्रतिदिन बल्कि हर घंटे हर क्षण करता रहता है। हम आज इस प्रकार के समाज में जीवन जी रहे हैं जहां साधारण तौर पर गाली गलौज से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। परमेश्वर भी अपने वचन में सामान्य भाषा का प्रयोग करता है, परंतु वह किसी भी दृष्टिकोण से अभद्र भाषा नहीं लेता है। जहां पर बाइबल अत्यधिक व्यक्तिगत विषयों पर बात करती है, उस समय पर साधारणता उसे अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि मेरा मानना है कि हमें उन्हें अनदेखा या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक शिक्षा या सबक छुपे हुए हैं। आइए हम देखें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसका एक पद, जिसके अंड कुचले गए व लिंग काट डाला गया हो, वह यहोवा की सभा में न आने पाए। मित्रों, यह एक सर्वाधिक असाधारण नियम है या नहीं? परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि यह हमें तपस्वी के बारे में बताता है और परमेश्वर इसका विरोध करते हैं। मध्यकाल के दौरान लोगों ने यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में भ्रष्टता को देखा और वे संसार की बातों से फिरकर तपस्वी बन गए या संत बन गए। उन्होंने अपने अपने कामों से त्याग पत्र दे दिया और संसार से अलग होकर धर्म की शिक्षा लेने चले गए। स्पष्ट तौर पर कोई भी उन्हें उस समय पर ऐसा करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था, परंतु यह एक महापाप के समान है और परमेश्वर इसके विपरीत अर्थात खिलाफ हमें चेतावनी देता है। आज आप प्रोटेस्टेंट में इस प्रकार के कानूनों को पा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महसूस करते हैं कि वे बिल्कुल अलग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी उनमें से किसी एक को भी मैंने कभी खुशहाल मनुष्य नहीं पाया है। बल्कि सच कहूं तो मैंने उनमें से बहुत से लोगों को बहुत ही खतरनाक मनुष्य के रूप में देखा है। मेरे मित्रों, जब कभी उनके सामने कोई सांसारिक बात को रखा जाता है तो वे बहुत ही धर्मप्रायण व्यवहार करने लगते हैं और सकते में पड़ जाते हैं। मैंने पाया है कि वे लोग भयंकर चुगली करने वाले और उनके व्यावसायिक रिश्तों में वे कभी आदर के योग्य नहीं होते हैं। मेरा खुद का अनुभव इस प्रकार के लोगों के साथ में बहुत ही कड़वा रहा है, जो अलग किए गए मसीही थे परंतु पूरी तरह से बेईमान थे। हम व्यवस्था विवरण 23 उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर यहां पर थोड़ी कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई कुकर्म से जन्मा बच्चा परमेश्वर की मंडली में प्रवेश नहीं कर सकता था। आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं, अर्थात क्या मतलब है? आज परमेश्वर की संतान होने के लिए नया जन्म पाना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं राजा की संतान हूं। बहुत हैं, परंतु वे राजा की संतान नहीं है, वे कुकर्म की संतान है। एक आदमी धार्मिक और नया जन्म नहीं पाया हुआ भी हो सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति बिल्कुल भी परमेश्वर की संतान नहीं है। परमेश्वर इस बात को बहुत ही स्पष्ट करते हैं। हम देखते हैं कि निकोदिमस एक फरीसी था, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति, लोगों का एक माननीय व्यक्ति और धार्मिक अगुवा जो अपने बातों को धरता था। फिर भी वह व्यक्ति एक गैर कानूनी औलाद था या संतान था। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता है। हमारे परमेश्वर ने उसे स्पष्ट करने के लिए काफी कठोर भाषा का प्रयोग किया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद में इसे देख सकते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से हम सभाओं में जाते हैं और हम सभाओं को करते हैं, तो बहुत से सेवकों को हम देख पाते हैं। एक सेवक ने मुझसे कहा, आज बहुत से प्रभु के सेवक हैं जो बुरी तरह से पापों में डूबे हुए हैं। वे सोचते हैं कि उनके बपतिस्मा लेने की वजह से वे परमेश्वर की संतान बन गए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि कुकर्म की संतान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, वह परमेश्वर की मंडली में नहीं बैठ सकता। परमेश्वर की कोई भी गैर कानूनी संतान नहीं है, क्योंकि हर एक जन कानूनी तौर से नया जन्म पाया हुआ है। मेरे मित्रों, आज आपके पास में खुद अपने आप से पूछने के लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या आप मसीह और अपने उद्धारकर्ता को जानते हैं? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे न तो लोहू से न शरीर की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या आप कानूनी तौर पर परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य हैं? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कितनी सभाओं में आपने हिस्सा लिया है, या कितनी कलीसियाओं में आपने सदस्यता ली है, या आप कितने धार्मिक हैं। जब तक कि आप राजा की संतान नहीं बनते, आप एक कुकर्म की संतान हैं। मित्रों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम नया जन्म नहीं प्राप्त कर लेते हैं, हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं, जो एक कानूनी संतान का अधिकार है। अन्यथा आप कुकर्म की संतान के रूप में गिने जाएंगे। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, कोई अमोनी व मुआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए, इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम्न्या हरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि खगोलिक तरीकों से इस बात पर पता लगाया गया है कि अमोनी और मुआबी सबसे बुरी किस्म के मूर्ति पूजक थे। उन्होंने इन लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली बहुत सी छोटी और बड़ी बाल देवताओं की मूर्तियों को पाया है। झूठा धर्म परमेश्वर की मंडली का हिस्सा नहीं होने जा रहा है, और कोई कैसे झूठे धर्म को पहचान सकता है? उनके फलों से आप उनको पहचान सकते हैं, उनके व्यवहार से आप उन्हें पहचान सकते हैं, और इसका प्रमाण यह है कि जब तुम मिस्र से निकल आते थे, तब उन्होंने अन्न और जल लेकर तुमसे भेंट नहीं की, और उन्होंने बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी थी। अर्थात उन्हें श्रापित करने के लिए बिलाम को बुलाया गया था। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 23 उसके 5 और 6 पद में, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था, तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। मेरे मित्रों, यह सुनने में जरूर थोड़ा कठोर दिखाई देता है, परंतु झूठ धर्मों से जुड़ने पर यह परमेश्वर की चेतावनी है। झूठा धर्म मूल रूप से शैतानिक होता है। शैतान परमेश्वर की मंडली में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और यह झूठा धर्म है जिसने किसी भी चीज से बढ़कर आज संसार को नुकसान पहुंचाया है। मेरे मित्रों, यह संभव है कि एक कलीसिया जिसकी बहुत सुंदर इमारत या मकान हो, जिसकी सीढ़ियां अति सुंदर हो और जिसमें बहुत अच्छा ऑर्गन बजाने वाला हो, वह शैतान की मांद हो, तो इससे क्या फायदा। हमें झूठे धर्मों से चौकन्ना रहना है, झूठे धर्म या शिक्षा से चौकन्ना रहना है। परमेश्वर के राज्य में इसका कोई भी स्थान नहीं है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 23 उसके 7 पद में, किसी एदोमी से घृणा न करना क्योंकि वह तेरा भाई है, किसी मिस्री से भी घृणा न करना क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। मित्रों, हमने उत्पत्ति की पुस्तक में देखा है कि एदोम ही एसाव है, और एसाव और याकूब दोनों ही जुड़वा भाई थे। अम्मोन और मोआब से नफरत की गई, क्यों? क्यों नहीं एदोम से? क्योंकि एक एदोमी उनका भाई था। एक विश्वासी के लिए एसाव हमारे पुराने स्वभाव को दर्शाता है, अर्थात शरीर को। हो सकता है कि हम अपने देह से नफरत करें, हम उसे रौंद डालें, उसे दंडित करें, उसे विकलांग बना दें, परंतु इन सब से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अपने शरीर से नफरत करने के लिए नहीं, परंतु उसके अनुसार न चलने के लिए हैं। हमारे पुराने स्वभाव को हमें अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। शरीर परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, परंतु वह हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और उसे नफरत करने से हमें कोई भी फायदा या लाभ नहीं होगा। मेरे मित्रों, उन्हें किसी मिस्री से घृणा नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि आप उसके देश में एक परदेशी थे। एक समय था कि इसराइली लोग वहां पर बंधुआ थे। वचन के अंदर मिस्र संसार को दर्शाता है। हमसे कहा गया है कि तुम न तो संसार और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में हम पाते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक सुंदरता या हमारे घर, हमारी कार और हमारी आराम की चीजें हमारे चारों ओर बसे संसार का हिस्सा है। यहाँ इस बात का मतलब यह है कि हमें इन वस्तुओं के प्रेम में खो नहीं जाना है, बिल्कुल हमें उन्हें तुच्छ नहीं जानना है, परंतु हमें उनके प्रेम में भी नहीं पड़ना है। आप और मैं इस दुनिया में एक मुसाफिर या यात्री के समान हैं। जिस प्रकार से कभी भी इसराइल को मरुस्थल में फूल लगाने के लिए नहीं कहा गया था, उसी प्रकार से हमें भी संसार के किसी भी सुधार संबंधी आंदोलन का हिस्सा नहीं होना है। हमें केवल परमेश्वर के वचनों को बांटना है, और यही हमारा काम है। लेकिन इस दुनिया में हम मात्र एक यात्री से बढ़कर कुछ भी नहीं है जो यहां से गुजर रहे हैं। मेरे मित्रों, अब हम 9वें वचन से लेकर एक और खंड की शुरुआत करते हैं जो शुद्धता से संबंधित है। यद्यपि जब वे युद्ध के मैदान में थे तो उन्हें अपने छावनियों को साफ रखना था। हम व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसके 12 और 13 पद में पढ़ते हैं, छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे, और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी हो, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना। मेरे मित्रों, परमेश्वर साफ सफाई में रुचि रखता है। जहां कहीं मसीही लोग पाए जाते हैं या गए हैं, वहां पर साफ सफाई के स्तर में उन्नति हुई है। आज हम प्रदूषण से जुड़ी हुई बहुत सी खबरों को सुनते हैं। किसने इस सारी दुनिया को प्रदूषित किया है? निश्चित तौर पर वह परमेश्वर नहीं था। तो फिर यह सब किसने किया? उसने हमें स्वच्छ नदियां, साफ हवा, साफ पानी दिया है। यह पाप और पापमय मनुष्य है जिसने इस सृष्टि को प्रदूषित कर दिया है। मेरे मित्रों, यदि मनुष्य उन नियमों का पालन करे जो परमेश्वर ने उसे दिए हैं, तो यह धरती एक स्वच्छ स्थान होगी। और यही बात हमारे शरीर के लिए भी लागू होता है। परमेश्वर ने इस शरीर को हमें दिया है ताकि हम इसे स्वच्छ रखें, लेकिन कई लोग इसे बहुत सारी बुरी आदतों और नशे की बातों से इसे गंदा कर देते हैं, इसे अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इसे स्वच्छ रखें। हम व्यवस्था विवरण 23 उसके 14 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। मित्रों, परमेश्वर स्वच्छता को पसंद करता है, और मेरे विचार से वह वेबस्टर थे जिन्होंने कहा था कि स्वच्छता ईश्वरीयता के बराबर है। मैं सोचता हूं कि वह इससे भी अधिक नजदीक है। मैं इसके विषय में कहना चाहूंगा कि स्वच्छता ईश्वरीयता का एक हिस्सा है। मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वच्छ, वातावरण में स्वच्छता, अपने कामों में स्वच्छ और अपने विचारों में स्वच्छ बने। हमें आज इस संसार में पवित्र लोग बनना है, या कहें कि यह पुस्तक बहुत ही जल्द व्यवहारिक बातों को हमें सिखाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम व्यवस्था विवरण 23 उसके 17 और 18 पद में आगे पढ़ते हैं, इसराइली स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो और न इसराइलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई व कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों कमाई घृणित कर्म है। परमेश्वर ने कहा है कि उसके लोगों में कोई वेश्या या समलैंगिक ना हो। परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनैतिक, गलत और गैर कानूनी तरीके से आमदनी करने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह ऐसी कमाई को नहीं चाहता है। अब मैं आपके सामने ऐसी बातों को कहने जा रहा हूं जिनके बारे में मैं जानता हूं कि वे बहुत प्रचलित नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता कि कोई भी मसीही संस्था किसी भी ऐसे संगठन से अनुदान प्राप्त करेगी जो अनैतिक और गैर कानूनी हो। मैं प्रभु को धन्यवाद उन दो स्कूलों के लिए देता हूं जिन्होंने शराब बनाने वाले एक संगठन के अनुदान को वापस कर दिया। बहुत से सवालिया संगठन आदर कमाने के लिए सामने आते हैं और समाज सेवा में दान देते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं। व्यवस्था विवरण 23 उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज न देना। तू परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहां जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। एक बार फिर से परमेश्वर जोर डालते हैं कि उन्हें अपने भाइयों की देखभाल करनी चाहिए, और यदि वे उनसे पैसा उधार लेते हैं तो उन्हें उनसे उस पर कोई भी ब्याज नहीं लेना है। आगे व्यवस्था विवरण 23 उसके 21 और 22 पद में लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझ से ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। परमेश्वर के लिए मन्नत को पूरा करना सर्वोच्च कार्य था। किसी के लिए मन्नत मांगना कोई मजबूरी नहीं थी, परंतु जब एक व्यक्ति कोई मन्नत को मांग लेता है, तो वह मन्नत कभी बदल नहीं सकती, वह पहले जैसी ही बनी रहती है। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 23 उसके 24 और 25 पद में, जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर अर्थात हमारे प्रभु के चेलों ने भी इन कार्यों को किया, क्योंकि वे भूखे थे। जब वे एक खेत से होकर के जा रहे थे तो उन्होंने कुछ बालों को तोड़कर उसमें से कुछ खा लिया, जैसा कि हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं। यह गैर कानूनी नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि एक किसान अपने शिष्टाचार को बढ़ा सकता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 24 से जारी रखेंगे और इसका विषय है तलाक। यह अध्याय मूसा द्वारा दिए गए नियमों के साथ में आरंभ होता है। बाकी का यह अध्याय एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संबंधों के प्रति समर्पित है, जिसमें दया दिखाने की जरूरत है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कृपालु है और वह चाहता है कि उसके लोग एक दूसरे के प्रति दया को दिखाएं। लेकिन अब आगे देखते हैं तलाक के प्रति मूसा की व्यवस्था। 24 अध्याय उसका 1-4 पद में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना। मेरे मित्रों, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस प्रकार बुनियादी तथ्य में पुनः विवाह को क्यों डाला गया है। देखिए, परमेश्वर पत्नियों की अदल बदल से सहमत नहीं है, जो कि बड़ी मात्रा में होता है। उसमें कोई लेन देन का काम नहीं करना है, और यह वास्तव में तलाक देने की बहुत ही आसान तरकीब नजर आती है या नहीं? जी हाँ, यह बहुत ही आसान था। परमेश्वर ने इसको अनुमति क्यों दी? जी हाँ, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह से भी यह सवाल पूछा गया था। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़कर और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह कर ले वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। विवाह के समय पर किए गए वायदों के प्रति अविश्वास योग्यता ही केवल तलाक का आधार था। हालांकि हम पहला क्रंथियों की पत्री 7 में देखते हैं तलाक के एक और आधार को हमारे सामने लाकर रखा गया है। यीशु ने कहा कि मूसा को तुम्हारे मनों की कठोरता के कारण से इस नियम को बनाने की आज्ञा मिली थी। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने होने की अनुमति प्रदान की, परंतु वे प्रभु का मूल विचार नहीं था। वह इनको मनुष्यों के मनों की कठोरता के कारण अनुमति प्रदान करता है। आज भी तलाक के बहुत से विषयों में यह बात सही साबित होती है। यह बात हम में से बहुत से लोगों के घरों और बहुत से लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी सही साबित होती है। परमेश्वर बहुत दयालु है, इसलिए वह उन बातों को हमारे जीवन में होने की अनुमति प्रदान कर रहा है जो असल में उसकी मूल इच्छा नहीं है। यह उसकी अनुमति वाली इच्छा है जिसके तहत हम उसकी दया को महसूस करते हैं। मेरे मित्रों, इन बातों को जानने के पश्चात बहुत से अत्यधिक आत्मिक भाइयों के लिए आवश्यक होगा कि वे वर्तमान में इन लोगों के प्रति ज्यादा आलोचनात्मक न हो। हम व्यवस्था विवरण 24 उसके 5 पद में पढ़ते हैं, जो पुरुष हाल का ब्याहा हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। परमेश्वर लड़ाइयों के समय में भी घरों को बचाकर रखता है। परमेश्वर विवाह की कसमों की गंभीरता को आदर देता है। हम व्यवस्था विवरण 24 उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, कोई मनुष्य चक्की को व उसके ऊपर के पार्ट को बंधक न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखना है। तब हम आगे देखते हैं कि विविध नियम, हम 24 अध्याय उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं, यदि कोई अपने किसी इसराइली भाई को दास बनाने व बेच डालने की मनसा से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा चोर मार डाला जाए, ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। ध्यान दें, परमेश्वर गुलामी का खंडन करता है, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24 अध्याय उसके 20 से 22 पद में लिखा है, जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार ना झाड़ना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपने दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। मेरे मित्रों, परमेश्वर उन लोगों की देखभाल कर रहे थे जो असहाय थे, जो गरीब थे, जो थोड़े ही सौभाग्यशाली थे। परमेश्वर के पास में बहुत बढ़िया कंगालों के लिए परियोजना थी और मजे की बात तो यह थी कि वह कामयाब भी हुई। हम इस बात को तब और गहराई से देख पाएंगे जब हम रूत की पुस्तक में पहुंचेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है और आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तेरे